हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 7 और 8। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामघा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो जैसा कि अब भगवान हस्तिनापुर से पुनः द्वारिका में प्रवेश कर चुके हैं और द्वारिकावासी बड़े ही स्नेह के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए अपने अपने घरों से विभिन्न प्रकार की भेंटें भगवान के लिए लेकर आ रहे हैं, और जिस प्रकार एक नन्ना बालक बहुत समय के बाद थोड़ी देर के बाद जब अपने माता को देखता है या फिर अपने पिता से मिलता है, तो कितना स्नेह उसके हृदय में होता है उसके लिए, और उनको ऐसा लगता है कि आप चले गए थे तो मुझे आपके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाया करो, क्योंकि जब आप चले जाते हो तो हमारा जीना बहुत कठिन हो जाता है आपके बगैर, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज द्वारिकावासी भगवान को कह रहे हैं श्लोक नंबर 7 में, भवायनस्त्वं भवविश्व भावना त्वमेव माता तसुहृत् पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कीर्तिनो बभूविमा। भवायनस्त्वं भवविश्व भावना त्वमेव माता तसुहृत् पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। भवायनस्त्वं भवविश्व भावना त्वमेव माता तसुहृत् पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। शब्दार्थ, भावाय नस्त्वं भव विश्व भावना। विश्व भावना कहते हैं सारे विश्व को आनंद प्रदान करने वाले ब्रह्मांड के सृष्टा। ब्रह्मांड में यदि कोई आनंदित है तो वही है जिस पर आप कृपा करते हो, क्योंकि आप समस्त जीवों को कृपा करने वाले हो। इसलिए नस्त्वं, नह का मतलब होता है हम सबको, त्वं मतलब आप, भव मतलब बने। इसलिए क्योंकि आप सबको आनंद देते हैं इसलिए हमें भी भवाय, भवाय का मतलब होता है कल्याण कीजिए। अब क्योंकि हर किसी को कल्याण करना, हर किसी को आनंद देना आपका कर्तव्य, आपका ही क्षेत्र है। आनंद केवल आपके दर्शन से प्राप्त किया जा सकता है, आनंद केवल आपके सानिध्य से प्राप्त किया जा सकता है। तो भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना, क्योंकि आप सारे संसार को, सारे विश्व को आनंद देते हो तो हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी आनंद दीजिए। अर्थात वो कह रहे हैं कि हमें सदैव दर्शन दीजिए, क्योंकि जब आप चले जाते हैं तो हम मरने लगते हैं। इसलिए आप हमारे नेत्रों के से कभी भी दूर मत हुआ कीजिए, आप सदैव हमारे नेत्रों के समक्ष रहिए, क्योंकि आप तो सारे संसार के रचयिता हो, सारे संसार के सृष्टा हो। तो यदि कोई समय से पहले मरेगा तो फिर आप पर दोष आएगा ना, क्योंकि आपके कारण यदि ऐसा होगा तो आपका जब दर्शन नहीं होता तो ऐसा लगता है कि हमारी जान निकल जाती है और एक एक क्षण करोड़ों वर्षों की तरह लगता है, तो हम जी नहीं पाते, आपके बगैर जीना असंभव हो जाता है। हमें संसार का कुछ भी, संसार की कोई भी वस्तु आनंद नहीं दे सकती है, और हम केवल आपके विरह में मर रहे होते हैं, ना जी सक रहे होते हैं ना मर, मतलब जब आप चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि जीना संभव नहीं है। तो जिस तरह एक माता पिता बच्चों को कहते हैं, बच्चे माता पिता को बताते हैं कि हम आपसे इतना स्नेह करते हैं कि संसार में आपके अतिरिक्त और कोई हमें आनंद वस्तु नहीं देती है, उसी तरह ये द्वारिकावासी भी भगवान को कह रहे हैं। वास्तव में भक्तों, इस संसार में भगवान से इस तरह प्यार करना ही आत्मा का वास्तविक देह है, वास्तविक उद्देश्य है, परंतु इस संसार में भगवान से इस प्रकार कोई प्यार नहीं करता। इस संसार में व्यक्ति अपने ही परिवार में सुख मानता है, मेरा पति ठीक है, मेरा घर सही है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, मतलब अब आप खुश हो। और जब हमारे पति को, हमारे माता पिता को या हमारे बच्चे को कोई कष्ट है तो हम समझते हैं कि हम दुखी हैं। परंतु यहाँ पर वास्तविक आत्मा के आनंद की बात हो रही है। भवाय नस्तम भव विश्व भावना, क्योंकि आप ही केवल आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो वास्तविक दृष्टि से जिस परिवार में कृष्ण के दर्शन नहीं है, जिस परिवार में भगवान की भक्ति नहीं है, जिस परिवार में भगवान की कथा नहीं है, जिस प्रकार परिवार में शुद्ध भक्तों का संग नहीं है, तो समझिए कि वही उस परिवार की सबसे बड़ी दुर्दशा होती है। और रोना चाहिए, तड़पना चाहिए इन भगवान के सानिध्य के लिए, भक्तों के सानिध्य के लिए कि क्यों हमें प्राप्त नहीं है। जिस तरह से ये द्वारिकावासी आज भगवान को कह रहे हैं कि भवाय नस्तुम भव विश्व भावना, आप हमें आनंदित कीजिए, हम तो आपके विरह में मर रहे थे, जल रहे थे, जीना कठिन हो गया था। तब भगवान कहते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं भगवान कि आपके परिवार में सब कुछ तो है, माता है, पिता है, भाई, बंधु, मित्र, पुत्र, पुत्रियां, सब कुछ है, तो फिर आप उनके साथ आनंद कीजिए ना, आप मेरे बिना क्यों इतना तड़पते हैं। तब वे कहते हैं, तमेव माता तसुहृत पति पिता, नहीं हमारा और कोई नहीं है, तम त्वम एव, त्वम मतलब आप हैं, एव मतलब केवल आप हैं, हमारा अगर कोई है तो वो केवल आप हैं। चाहे माता था, आप माता अगर हमारी कोई है तो केवल आप हैं, तथा सुहृद यदि कोई हमारा शुभ चिंतक है, कोई वेल विशर है, तो केवल आप हैं। यदि हमारा कोई पति है तो केवल आप हैं, और यदि कोई पिता है तो केवल आप हैं। आपके अतिरिक्त हमारा किसी और से कोई संबंध नहीं है। त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्, हमारे सद्गुरु आप ही हैं और हमारे परम पूज्य देव भी आप हैं। अर्थात हमारा यदि किसी से कोई संबंध है तो केवल और केवल कृष्ण से। ये द्वारिका वासी कोई साधारण प्राणी नहीं थे, ये भगवान के पार्षद हैं और जीव की वास्तविकता बता रहे हैं कि हम संसार में आ जाते हैं तो कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग रिश्ते मिलते हैं, अलग अलग रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं, परंतु वास्तविक में यदि हमारा संबंध किसी से है, त्वमेव माता थ सुहृत पति पिता त्वं सद्गुरु न परमं च दैवता, एकमात्र संबंध केवल कृष्ण से है। और जीव आत्मा का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, तो भगवान से दूर होने पर जीव की स्थिति ऐसी होनी चाहिए मानो जिस प्रकार मछली का एक आसरा पानी होता है, है ना। मछली के पास पानी के अतिरिक्त और कोई प्रिय वस्तु नहीं होती है, तो यदि पानी से निकाल दिया जाता है तो तड़प तड़प के मर जाती है। उसी तरह से यदि जीव को भगवान से दूर कर दिया जाए तो जीव भी तड़पने लगता है, तड़प तड़प के उस मरने जैसी स्थिति हो जाती है उसकी। अगर नहीं हो रही है तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा यदि, हम आत्मा है और हमारा यदि कोई किसी के साथ संबंध है तो वो केवल और केवल भगवान के साथ है, कृष्ण के साथ है। और हमारी सफलता क्या है, बाबु यस्यानुवर्त्या कृतिनो भभुवः, यस्य जिसके अनुवृत्या चरण कमलों पर, कृतिनो सफल है भभुवः हम हुए हैं। यानी कि यदि हम किसी वजह से कृतिनो होते हैं, यदि यदि वास्तव में हमारे जीवन की कोई सफलता है तो क्या है, यस्य अनुवर्त्या, यानी कि आपकी सेवा करना, आपके चरण कमलों की सेवा करना, आपके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम सफल हो सकते हैं। हमारे जीवन की बस यही सफलता है कि हम तन मन धन से आपकी सेवा करें। यस यानो वृत्त्या, मतलब आपकी सेवा करना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त हम किसी और वस्तु से कृतिनो हो नहीं सकते, किसी और वस्तु से हमें आनंद आ नहीं सकता, ना ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। भले भौतिक लेवल पर हम बहुत बहुत वस्तुएं प्राप्त कर दें, बड़े बड़े अच्छे घर, बंगलोज, कार, गाड़ियां, बहुत सारे धन दौलत इत्यादि जमा कर दें, परंतु ये सफलता नहीं है जीवन की। वास्तविक सफलता है कि हमें भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हो, भगवान के दर्शन का अवसर प्राप्त हो, भगवान के सानिध्य का अवसर प्राप्त हो। तो कह रहे हैं कि वास्तविक हमारी सिद्धि, हमारी सफलता यही है कि हम आपकी सेवा करें, आपके सानिध्य में रहें। तो कृपया हमसे कभी दूर मत जाना, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं हमारा संसार में। तमेव माता, हमारी माता केवल आप हो। वास्तव में हम संसार में देखते हैं कि माता कितना स्नेह करती है अपने बच्चों के साथ, बहुत बहुत प्रेम करती है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आता है कि संसार की सारी माताएं, जितनी भी माता हैं, चाहे वो किसी भी योनि की माता हो, सारी माताओं का स्नेह, सारे पिताओं का स्नेह, सारे पतियों का प्रेम, सारे सुहृत जितने वेल विशर हैं उनका प्रेम, गुरु के प्रति जो सारा शिष्यों का प्रेम, शिष्य के प्रति जो गुरु का प्रेम है, वो सारा का सारा प्रेम, सारा का सारा स्नेह यदि कंबाइंड किया जाए, एक साथ रखा जाए, संसार में जितने भी जीव दूसरों के साथ जो भी संबंध रखते हैं, वो सारा का सारा प्रेम एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, तो वो कितना होगा जानते हैं? भगवान जितना प्रेम जीव आत्मा से करता है, वो प्रेम का जो सिंधु है उसके सीकर के बराबर होगा। सीकर का क्या मतलब है? कि एक लकड़ी जैसा होता है, लकड़ी होती है, उसको यदि हम समुद्र में डिप करते हैं और डिप करके जब उसको बाहर निकाल के उसको ऐसे छड़कते हैं, तो उसमें से बहुत छोटी 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 बूंदे निकलती हैं। तो उसका एक, अभी बहुत सारी बूंदे निकली ना, उसकी जो एक बूंद है उसके बराबर भी नहीं होगा। मतलब इतना कहते हैं कि जो सीकर है उसके बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में ये द्वारिकावासी कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं कि तमेव माता त सुहृत पति पिता, आप ही केवल हमारे सुहृत हो, आप ही पति। पति का क्या कर्तव्य है? आपकी रक्षा करना। पिता क्या क्या कर्तव्य है? कि आपसे स्नेह करके आपकी आवश्यकता को पूरा करना। माता का क्या कर्तव्य है? कि वो आपसे प्रेम करे और आपकी हर आवश्यकता का ध्यान करे। तो ये सारे कार्य वास्तव में कृष्ण करते हैं। कोई जीव चाहे भक्ति करे या ना करे, हर एक जीव को हर वो वस्तु प्रदान करते हैं जो उसके जीने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। कभी ये नहीं कहते कि ये तो मेरी भक्ति ने करता, मैं इसको सूर्य प्रकाश प्रदान नहीं करूंगा, ये तो मेरी भक्ति ने करता तो मैं क्यों वायु प्रदान करूं जिसमें वो ऑक्सीजन में सांस ले सके। एक कभी भी ये नहीं सोचता। एक दिन भी यदि हम भगवान की इस वायु को उसके द्वारा श्वास नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर यदि एक दिन भी हमें वेंटिलेटर पर रखता है तो कितना बिल आता है। सोचिए कि भगवान, हमने जितने साल तक जिया है और भगवान की ये वायु को हम, है ना, सुबह शाम सांस लेते रहते हैं, कभी बिल आ जाएगा तो क्या होगा? सोचा कभी? कभी भगवान ने यदि इलेक्ट्रिसिटी का हर महीने बिल आता है, भगवान यदि हमें बोले कि भाई जितना आज तक तुमने सूर्य प्रकाश लिया है उसका बिल दो, तो मतलब भगवान जो है वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। हमारे जीने के लिए हर वो वस्तु जो आवश्यक है वो हमें भगवान प्रोवाइड करते हैं। ना केवल इतना, हृदय में बैठे हैं परमात्मा की सूरत में, और मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वो हमें बुद्धि देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, और भूल जाने की शक्ति भी देते हैं कि यदि तुम भूल नहीं सकोगे तो फिर पुनः मेरी शरण में आने का सोचोगे नहीं, क्योंकि अपने अपराध, अपने घिनौनी करतूत तुम्हें हर वक्त इतना परेशान कर देंगे कि तुम अपने आप को इस योग्य ही नहीं समझोगे कि भक्ति करो। तो हर वो वस्तु जो कृष्ण के प्रति हमें अग्रसर कराए वो सब भगवान प्रदान करते हैं। भगवान हमें शास्त्र देते हैं, गुरु देते हैं, शुद्ध भक्तों का संग देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। तो हमसे हमारा यदि कोई वेल विशर है, कोई सुहृत है, तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए वास्तविक प्रेम यदि कोई करने के योग्य है तो वो केवल कृष्ण है। तो ये जो द्वारिकावासी हैं या जो ब्रजवासी हैं वो अपना वास्तविक प्रेम भगवान को देते हैं। इस संसार में सब देह के संबंधी हैं, सब हमारे देह के द्वारा ही उनका संबंध होता है। और ये ज्ञान हमें तब होता है जब हम माया से पार हो जाते हैं और हमारा ये सारा संबंधों के साथ जो प्रेम होता है वो कृष्ण के अंदर कन्वर्ट होता है। ये सारा प्रेम जो है वो जब हम कृष्ण को देते हैं तब समझो वो जीव माया से पार हो गया है। तो एक ऐसी लीला आती है ब्रज लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला, जब सारे, क्योंकि ब्रज के सारे जितने भी लोग थे वो प्रेम किससे करते थे? भगवान के साथ, केवल कृष्ण के साथ उनका स्नेह होता था। अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने रिलेटिव्स में उनका इतना स्नेह नहीं होता था, केवल कृष्ण में होता था। जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी सारे बछड़े और गवों को लेके चले गए तो भगवान ने अपने स्वरूप को विस्तृत किया और सारे ग्वाले और गईये जो भी ब्रह्मा जी लेके गए थे उनमें अपने स्वरूप को एक्सपेंड किया। फिर क्या हुआ कि जब ये बच्चे और बछड़े घर गए तो सब उनके माता पिता अपने बच्चों में बहुत स्नेह करने लगे, क्योंकि भले उनको पता नहीं था कि ये कृष्ण है लेकिन स्वरूप का ज्ञान तो होता है ना, जो हृदय के अंदर प्रेम होता है वो उमड़ने लगा। गायें जो थी वो अपने बच्चों से इतना स्नेह करती थी, सारा दिन चाटती रहती थी, और जो माताएं होती थी वो अपने लड़कों से, ग्वालों से इतना ज्यादा प्यार करती थी। मतलब जो प्रेम केवल कृष्ण को देते थे वो अपने बच्चों और अपने गायों हर किसी में वो प्रेम होने लगा। ये देखकर बलदाव जी बहुत आकर्षित, मतलब आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि कृष्ण से पूछा, कृष्ण क्या माया के कंट्रोल में आ गए हैं ब्रजवासी जो अब अपने परिवार में, अपने बच्चों में इनको इतना स्नेह हो गया है? पहले तो ये केवल तुमसे प्रेम करते थे, क्योंकि बलदाव उस समय थे नहीं जिस समय ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर कृष्ण को बलदाव ने, सॉरी, जब कृष्ण से बलदाव ने पूछा तो कृष्ण ने पूरी लीला सुनाई और कहा, अब यहाँ कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। इसी के कारण हर किसी में उनको कृष्ण की अनुभूति हो रही है, तो सारा सारा प्रेम जो है वो उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई वास्तविक हमारे प्रेम करने योग्य है तो वो केवल कृष्ण है, बाकी तो हमें अपना कर्तव्य निभाना है। और इसी बात को बता रहे हैं ये द्वारिकावासी, त्वमेव माता तथा सुहृत पति पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूवम्। तो हमारे जीवन की सफलता क्योंकि आपसे ही संबंध है, तो आपकी सेवा में ही हमारे जीवन की परम सफलता है। तो इसलिए जब हम आपसे दूर होते हैं तो फिर मानो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है, और जब हम आपको पुनः देखते हैं तब ही हम कृत कृत होते हैं।
तुमने खाना सही किया ही नहीं क्या? ठंडा हो गया ये तो वापस। कितनी देर लगानी है? मेरा क्यों खोल रही हो? अल्लाह मेरा तो नहीं खोलो। जल्दी रहो।
क्षमा कीजिएगा। आगे देखिए श्लोक नंबर 8 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि वो द्वारिकावासी भगवान को कह रहे हैं, अहो सनाथा भवतास्मयत्वयम् त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येमरूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवतास्मयत्वयम् त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येमरूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथा भवतास्मयत्वयम् त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येमरूपं तव सर्वसौभगम्। शब्दात् अहो सनाथा भवतास्मयत्वयम्, यानी जब आपका हंसता हुआ मुख देखते हैं, भवतास्मयत्वयम् अहो, अर्थात ये तो हमारा सौभाग्य है आपने आकर सनाथा, क्योंकि इतने दिन तो आप हमारे साथ नहीं थे, तो आपसे दूर होने के कारण हम अनाथ, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अनाथ हो गए हैं। अब इतने दुखी थे कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था, परंतु आज आपने दर्शन देकर अहो सनाथा, आपने हमें सनाथ कर दिया है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम वास्तविक आनंद हमें प्राप्त हुआ है। और कैसे आनंद प्राप्त हुआ है? क्योंकि आपके दर्शन हो गए। आपके दर्शन वास्तव में प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं है, बहुत कठिनाई से। यहाँ कहते हैं त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शन। दूरदर्शनम का मतलब होता है बहुत बहुत रेयर प्राप्त होते हैं आपके दर्शन, बहुत बहुत कम प्राप्त होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग का सौभाग्य है कि आप उनको दर्शन देते हो। लोगों की बात छोड़ दीजिए, त्रैविष्टपानाम यानी त्रैविष्टपाना मतलब देवताओं के लिए भी आपका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ, देवता भी तरसते हैं आपके मुख के दर्शन करने के लिए। और कैसा मुख है? बहुत सुंदर। यहाँ पर भगवान के मुख कमल की विषय में बता रहे हैं, प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम्। प्रेमस्मित, प्रेम के साथ मुस्कान। स्मित कहते हैं मुस्कान, प्रेम से हंसते हुए। और स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्नेहपूर्ण, स्नेह के साथ। और निरीक्षण मतलब दिखाई देते हैं। एक तो प्रेम से हंसते हो, और जब हंसते हो और कोई आपकी ओर देखता है तो स्नेह से उसको देखते हो, तो ये स्वरूप जो है, पश्चिम रूपम तव सर्व सौभगम, ऐसा स्वरूप देखकर ही हमें वास्तव में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मतलब जैसे आपको देखा है इतने समय के बाद, आप हंस रहे हो, मुस्कुराते हो, प्रेम से स्नेह के साथ निरीक्षण करते हो। भगवान सदा प्रेम से मुस्कुराते हैं, जिसको भी देखते हैं स्नेह के साथ देखते हैं। भगवान को कभी कोई टेंशन ऐसा नहीं है कि भगवान है ना बहुत सारा का अभी इतना सारा सफर करके आए हैं, कितना कभी कभी हम लोग देखते ना बड़ा दूसरा बड़ा सफर करके आते हैं तो कैसा टायर्ड इतना होते हैं कि कोई आता है बस ऐसे ही थका हुआ फेस उनको दिखाते हैं, स्माइल भी नहीं, बहुत थका हुआ हूँ। इवन स्कूल से भी बच्चे आते हैं थोड़ा सा नीचे तक उनको है ना स्कूल वैन छोड़ के जाती है, फिर भी ऊपर चढ़ के भी आते हैं तो भी इतना थका हुआ होगा उनका मुंह उतरा हुआ होगा, बिल्कुल थके हुए होते हैं, किसी के साथ भी बात करना उनको अच्छा नहीं लगता, रिलैक्स होना चाहते हैं। लेकिन भगवान कभी भी ऐसा नहीं होता, भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, वो सच्चित आनंद है, कभी भी कोई टेंशन ऐसा नहीं है कि भगवान आएंगे कभी कहीं से तो उनका मुंह ऐसे ही सेट फेज होगा, मतलब हमेशा हंसते हैं भगवान। जब भी गऊ चराने जाते हैं पूरा दिन गऊ चरा के जब आते हैं भगवान तो सारा ब्रज जो है वो व्याकुल होता है भगवान के दर्शन करने के लिए, ब्रजवासी उस राह पर नेत्र बिछाए बैठे होते हैं और भगवान जब आते हैं तो प्रेम स्मित स्नेह निरीक्षण प्रेम से सबकी ओर मुस्कान भरे नेत्रों से स्नेह के साथ भगवान सबको देखते हैं तो सब अपने सारे कष्ट को जितना दुख उन्हें हो रहा था भगवान के ना होने से वो सब भूल जाते हैं। भगवान बहुत आनंद से केवल भगवान को एक बार देखकर वो सब आनंदित हो जाते हैं। तो भगवान चाहे किसी भी अवस्था में होते हैं, चाहे वो गैया चरा के आ रहे हों, चाहे किसी राक्षस का वध करके आ रहे हों, या बड़ी बड़ी यात्रा करके आ रहे हों, या फिर युद्ध भूमि में भगवान जब रथ जला रहे हैं, युद्ध भूमि में कितना विकट समय है, कितनी लाशें गिर रही हैं, कितने लोग के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, कितना तीव्रता से भगवान को रथ चलाना पड़ रहा है, और उस समय का दृश्य जब दिखाते हैं शास्त्र, भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं उसी भगवान को देखते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ जब युद्ध भूमि में घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल से उनके जो अलके हैं वो धूल से स्नेह जाती हैं और जिनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें हैं और जब उनके हलके हिलती हैं तो उन बूंदों को पसीने की बूंदों को साफ करते, अर्थात भगवान इतने व्यस्त हैं कि भगवान के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने चेहरे से पसीने की बूंदें हटाएं, तो वो इस समय भी भगवान इतने सुंदर लग रहे होते हैं कि वो भी तभी भी प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षण तब भी प्रेम से स्मित करते हैं। जो भी प्रतिद्वंद्वी आता है युद्ध करने के लिए अर्जुन की ओर तो भगवान का पहले मुखारविंद पर जैसे ही, क्योंकि अर्जुन पर तो कब नजर पड़े तब पड़े, पहले तो कृष्ण आगे बैठे हुए हैं और प्रेम से मुस्कान बड़े नेत्रों से और स्नेह से उनको निरीक्षण करते हैं। जैसे ही देखते हैं आधा तो वहीं पर घायल हो जाता है और फिर अब अर्जुन के पास अर्जुन को पराक्रम दिखाने की आवश्यकता ही नहीं, मरे हुए को क्या मारना, क्योंकि जब भगवान प्रेम से मुस्कुराते हुए बहुत स्नेह से देखते हैं तो बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। और इसका आस्वादन किया द्वारिका वासियों ने, जब एक बार भगवान के मुस्कुराते हुए मुखमंडल को कोई देख लेता है तो वो बता रहे हैं कि अब इस सुंदर मुख को देखे बिना जीना संभव नहीं, हमारा हम जी नहीं सकेंगे और बार बार इस मुख को देखना चाहते हैं, प्रतिदिन देखना चाहते हैं, बल्कि प्रतिदिन में सैकड़ों बार देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि द्वारिकावासी बस सवेरे भगवान को एक दफा देख कर आ गए दर्शन करके और बस हो गया, काफी एक बार दर्शन किया, हाँ द्वारिकाधीश को देख के आए, सुबह को मिल के आए, नहीं, क्योंकि वो स्नेह इतना तीव्र है, इतना गाढ़ आघार प्रेम है, तो वो एक एक दिन में बार बार द्वारिकाधीश के दर्शन करना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पहली बार दर्शन कर रहे हैं, जब भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्रीमती राधा रानी एक पद में बताती हैं कि मैंने जीवन भर केवल कृष्ण को ही देखा है और कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ देखा नहीं, परंतु फिर भी जब भी कृष्ण देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं पहली बार कृष्ण को देख रही हूँ, इतनी लालसा होती है भक्त के हृदय में भगवान के दर्शन करने की कि वो हर एक क्षण कृष्ण को देखना चाहता है और उसे ऐसा लगता है, ऐसा होता है ना जब हम हमारे मंदिर में भी जो हमारी विग्रह होती है, कभी हम किसी थोड़े समय के लिए बाहर चले जाते हैं फिर आते हैं तो कितना प्रेम, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि कृष्ण तुमसे दूर गए थे, भले ही वहां पर कितना आनंद था कुछ भी था लेकिन आप नहीं थे, आपको बहुत याद किया। और जब हम हमारे घर में विग्रह होते हैं हम लोग बार बार आते जाते महाना मतलब आते जाते बार बार उस पर नजर जाती है। भक्त को भगवान के दर्शन में इतना आनंद आता है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरा वास्तविक सौभाग्य यही है कि मैं उनको इनके दर्शन करूं। तो यहाँ पर भी ये द्वारिकावासी भगवान को कह रहे हैं कि जब आप विदेश चले जाते हैं तो फिर या फिर कहीं चले जाते हैं, हस्तिनापुर चले जाते हैं या फिर यात्रा के लिए, तो फिर हमारा जीना बहुत कठिन हो जाता है। और जब हम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम, क्योंकि हमारा वास्तविक यदि कोई सौभाग्य है तो आपके दर्शन करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं आप में अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।